दीवा रक्षित से मिलने के लिए डिटेंशन सेंटर आई थी। रक्षित को अपने किए पर पछतावा था और वो दीवा से माफ़ी मांग रहा था, लेकिन दीवा उसे भूल नहीं पा रही थी। जाने से पहले दीवा ने अचानक रक्षित से पूछा कि उसे कितने सालों की सज़ा होगी। रक्षित ने 10 सालों का बताया, जिसे सुनकर दीवा टूट गई। उसे रक्षित के लिए अचानक बुरा लगने लगा। आने वाले 10 सालों में रक्षित को अपनी ज़िंदगी एक अंधेरे कमरे में बितानी होगी, कैद के अंदर, जहाँ उसका कोई भविष्य नहीं होगा। ये जानते ही दीवा फूट फूट कर रोने लगी। उसका सब्र का बांध टूट गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके प्यार का एक दिन ये अंजाम होगा। दीवा को रोते देखकर रक्षित ने उसके कंधे पर हाथ रखा और प्यार से कहा, रोना बंद करो दीवा, तुम्हारी किस्मत में ये आंसू नहीं बल्कि एक अच्छी ज़िंदगी लिखी है। देखा जाए तो अच्छा हुआ जो तुम मुझसे अलग हो गई, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। दीवा ने रोते हुए उसकी तरफ देखा और बोली, तुम मुझे अच्छी ज़िंदगी की दुआ दे रहे हो जबकि ऐसा कभी नहीं हो सकता है। बताओ तुमने ऐसा क्यों किया, सब कुछ कितना अच्छे से चल रहा था। दीवा को एहसास नहीं हुआ कि वो रोते हुए रक्षित के गले लग गई थी। रक्षित भी उसे प्यार से सहला रहा था। आज उसकी आंखों में दीवा को पाने का लालच नहीं था, उसकी आंखों में सिर्फ प्यार और पछतावा था। दीवा को इस तरह रोते देखकर पास खड़ा स्टाफ भी उस पर तरस खाने लगा। मिलने का समय भी खत्म हो गया था। तब एक लेडी कांस्टेबल दीवा को पकड़कर बाहर ले गई। रक्षित उसे जाते हुए देख रहा था, शायद ये आखिरी बार था जब वो उसे देख पा रहा था। रक्षित की आंखों से आंसुओं का एक कतरा बह गया। उसने मन ही मन कहा, जहां भी रहो खुश रहना। इसके बाद रक्षित को भी वहां से वापस जेल के लिए ले जाया गया। दीवा बाहर आ गई थी, उसकी हालत ठीक नहीं थी। उसे इस बात का बुरा नहीं लग रहा था कि उसके साथ धोखा क्यों हुआ, बल्कि उसे सबसे ज्यादा इस बात का दुख हो रहा था कि उसने रक्षित से सच्चे दिल से प्यार किया था। उसका प्यार सिर्फ एक भ्रम था, जबकि रक्षित तो उसके करीब इसलिए आया था ताकि वो उसका इस्तेमाल कर सके। दीवा जल्दी से जाकर गाड़ी के अंदर बैठ गई। उसने अपना मुंह साफ किया और खुद को पहले की तरह नॉर्मल कर लिया था। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, वो किसी रोबोट की तरह लग रही थी। वीकेंड होने की वजह से दीवा का शेड्यूल आज कुछ खास नहीं था, इसलिए उसने वापस हॉस्पिटल न जाने का सोचा। उसकी गाड़ी सीधी हाई स्कूल की तरफ बढ़ रही थी। इनाया की भी छुट्टी थी, इसलिए वो उसे लेने के लिए स्कूल गई। जब वो स्कूल पहुंची तो उसने देखा कि इनाया अपनी दोस्त के साथ हंसते हुए ग्राउंड में बातें कर रही थी। इनाया की तरफ बढ़ते हुए दीवा ने अपने चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कुराहट ओढ़ ली। वो उसके पास जाकर बोली, लगता है आज तुम्हारा घर जाने का इरादा नहीं है। इरादा है दीदी, लेकिन आज हमने मूवी प्लान की है, क्या आप हमारे साथ चलेंगी, इनाया ने जवाब दिया। दीवा ने कुछ पल सोचा और फिर हाँ कह दिया। वैसे भी उसे अपने मूड को सही करने की जरूरत थी। तभी उसकी नज़र पास खड़ी लड़की की तरफ गई। इनाया ने उसका इंट्रोडक्शन देते हुए कहा, अरे हाँ दीदी, ये मेरी फ्रेंड अमायरा है, ये भी हमारे साथ मूवी के लिए चलेगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। अमायरा ने तुरंत नामे सिर हिलाकर कहा, अरे नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरे पेरेंट्स मुझे लेने के लिए आ जाएंगे, वीकेंड में उनके साथ बिताने वाली हूँ। दीवा समझ गई कि अमायरा क्यों मना कर रही थी। उसके चेहरे पर हिचकिचाहट थी, वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से फालतू खर्च हो। तुम भी हमारे साथ चल सकती हो, वैसे भी इनाया की दीदी हॉस्पिटल में डॉक्टर है और अच्छा खासा कमा लेती है, तो ज़्यादा मत सोचो, मूवी के बाद हम साथ में लंच करेंगे, दीवा ने काफ़ी फ्रेंडली वे में बोला, तो अमायरा ने भी हाँ कह दी। वो तीनों वहाँ से मूवी देखने के लिए निकल गई। जैसे ही वे लोग मल्टीप्लेक्स थिएटर में पहुंचे, वहां सामने उन्हें उनके टीचर समय दिखाई दिए। समय को देखते ही अमायरा ने जल्दी से दीवा का हाथ पकड़ लिया। वो थोड़ा घबराकर बोली, अरे नहीं समय सर, वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कहीं इन्होंने हमारी कंप्लेंट कर दी तो। ऐसा कुछ नहीं है, तुम बस देखती जाओ, इनाया ने शरारती अंदाज में कहा। वहीं जब समय ने दीवा को देखा तो वो मुस्कुराते हुए उनके पास गया। उसने दीवा से कहा, अगर पहले पता होता कि तुम भी मूवी देखने का प्लान कर रही हो तो हम साथ में आते। कोई बात नहीं, अब साथ चलते हैं, दीवा ने मुस्कुराकर कहा। समय और दीवा आगे चल रहे थे जबकि इनाया और अमायरा पीछे थीं। अमायरा हैरानी से उनकी तरफ देख रही थी, उसने पहली बार समय को मुस्कुराते हुए देखा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि समय सर तुम्हारी बहन को डेट कर रहे हो, मैंने आज से पहले उन्हें इतना मुस्कुराते हुए भी नहीं देखा, स्माइल करते हुए तो वे और भी हैंडसम लग रहे हैं, अमायरा ने कहा। डेट कर तो नहीं रहे, लेकिन करने लग जाएं तो कितना अच्छा होगा, सोचो समय सर मेरे जीजू होंगे, वैसे भी पूरे स्कूल में समय सर सबसे फेमस हैं, सबका क्रश है वो, और अगर वो मेरे जीजू बनेंगे तो मैं कितनी पॉपुलर हो जाऊंगी, इनाया ने खुश होकर कहा। वो तो मन ही मन समय और दीवा की शादी के सपने भी देखने लगी थी। हाँ ऐसा हो जाए तो अच्छा ही है, अमायरा ने भी उसकी बात पर सहमति जताई। मूवी देखने के बाद उन्होंने साथ में लंच किया। अमायरा और इनाया जानबूझकर अलग टेबल पर बैठी थी ताकि उनकी प्राइवेसी इंटरैक्ट ना हो, वे यही सोच रही थी कि शायद इस तरह दीवा और समय एक दूसरे के करीब आ जाएं। वैसे भी दीवा का अभी अभी ब्रेकअप हुआ था तो इनाया यही चाहती थी कि उसकी लाइफ में एक अच्छा पार्टनर आए। लंच हो जाने के बाद दीवा इनाया के साथ घर पहुंची। इनाया काफ़ी खुश थी और साथ में दीवा भी, क्योंकि आज वो काफ़ी टाइम के बाद घर आई थी। प्रार्थना ने उन दोनों को साथ में देखा तो वो खुश होकर बोली, अरे आज तो मेरी दोनों बेटियां घर पर आई हैं। प्रार्थना इनाया को भी अपनी बेटी की तरह ही प्यार करती थी। बिल्कुल बड़ी मॉम, आपकी दोनों बेटियां घर आई हैं तो आपको ज्यादा खातिरदारी करनी पड़ेगी, इनाया ने हंसकर कहा। वैसे तो वे दोनों लंच करके आई थी, लेकिन फिर भी प्रार्थना ने उनके सामने फ्रूट चाट रख दिया तो वे दोनों उसे खाने लगी। उसी बीच सुमन का मैसेज आया तो दीवा ने जवाब में कहा कि आज रात वो घर नहीं आएगी। वैसे भी आर्यांश की तरफ से उसे अपने घर पर रुकने की इजाजत थी। दीवा और इनाया आपस में बातें करने में लगी थी तभी प्रार्थना ने थोड़े गंभीर स्वर में कहा, चलो अब अपनी बातें बंद करो दीवा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। दीवा ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और हां में सिर हिला दिया। इन खुशियों के बदले कोई उसकी जान भी मांग लेता तो वो आराम से दे सकती थी। सुबह रक्षित से मिलने के बाद उसका जो मूड खराब हुआ था वो अपने घर पर आने के बाद कुछ ही देर में ठीक हो चुका था। इस बीच नवीन भी वहां पर आ चुके थे। प्रार्थना ने बात की शुरुआत करते हुए कहा, दीवा अग्रवाल फैमिली का इकलौता बेटा व्यांश अग्रवाल, वो US से अपनी स्टडी कंप्लीट करके आ चुका है। फिलहाल वो कुछ महीने से यहीं पर है, ऐसे में हमारे लिए बात करना आसान हो जाएगा। बोलते हुए प्रार्थना ने नवीन की तरफ इशारा किया ताकि वो बात को आगे बढ़ाए, लेकिन नवीन इस मामले में पूरी तरह चुप थे। उनके बिना बोले ही दीवा उनकी बातों का मतलब समझ रही थी। उसने अपने होठों को कसकर बंद किया और फिर कुछ पल रुककर कहा, माँ आपके कहने का मतलब क्या है? उसे गुस्सा आ रहा था कि प्रार्थना दीवा की शादी का सोच रही थी। अरे इसमें इतना नाराज होने जैसा क्या है, लड़के से मिल तो लो, ये रिश्ता बंदिता आंटी ने बताया है, तुम जानती हो मैं उन्हें मना नहीं कर सकती, हमारे उनके साथ रिलेशन काफी अच्छे हैं, प्रार्थना ने बच्चों की तरह मुंह बनाकर कहा।
बंदिता आंटी ने रिश्ता बताया क्योंकि वे सबके लिए रिश्ते बताती रहती है मॉम, आप भूल रही हैं कि उनकी मैट्रिमोनियल एजेंसी है। और प्लीज मैं अभी इन सबके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ और ना ही मुझे किसी व्यांश अग्रवाल में इंटरेस्ट है। वैसे भी मैंने सुना है उसकी फैमिली बहुत अजीब है। दीवा ने साफ मना कर दिया, अभी वो एक टॉक्सिक रिश्ते से बाहर निकली थी, ऊपर से अनजाने में ही सही वो आर्यांश के साथ एक अजीब से रिश्ते में बंधी हुई थी। आर्यांश के साथ रहते हुए उसे दुनिया के हर लड़के से नफरत होने लगी थी, ऊपर से कोई व्यांश अग्रवाल उसकी जिंदगी में आने के ख्वाब देख रहा था। मैं तुम्हारी तकलीफ को समझ सकती हूँ, मैं यही चाहती हूँ कि तुम उसे भूल जाओ और जल्द से जल्द आगे बढ़ो। मैं जानती हूँ कि अग्रवाल फैमिली थोड़ी अजीब टाइप की है, लेकिन यकीन मानो व्यांश अपनी फैमिली जैसी बिल्कुल नहीं है। प्रार्थना ने दीवा को समझाने की कोशिश की, अगर ये नहीं जाना चाहती तो तुम क्यों जिद कर रही हो? नवीन ने भी प्रार्थना से बात करने की कोशिश की, पर प्रार्थना ने उसकी बात काटते हुए कहा, आप समझते नहीं हो, बहुत मुश्किल से सब कुछ हमारे पास वापस आया है, भगवान ना करे फिर से ऐसी सिचुएशन आ गई तो दीवा के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। मैं जानती हूँ कि वो डॉक्टर है और काबिल भी है, पर एक अच्छे जीवन साथी के होने से जिंदगी आसान हो जाती है। दीवा जानती थी कि प्रार्थना एक बार कोई चीज़ ठान लेती है तो वो पीछे नहीं हटती। उसने प्रार्थना का मुंह बंद करवाने के लिए कहा, ठीक है मैं उस लड़के से मिल लूंगी, पर प्लीज़ उसके बारे में अब और बात मत कीजिए, मेरा सर दर्द कर रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट मंडे तुम उससे मिलने के लिए जाओगी, प्रार्थना ने खुश होकर कहा। दीवा उनसे बात कर रही थी इसलिए उसका मोबाइल बजा। इनाया ने देखा ये समय का कॉल था तो वो खुश हो गई। वही दीवा को वहां से निकलने का मौका मिल गया। वो जल्दी से अपना फ़ोन लेकर कमरे में पहुंची और उसने बिना लाइट चलाए कॉल रिसीव कर लिया। वो बेड पर आराम से लेट रही थी। तुम घर पहुंच गई हो क्या? समय ने पूछा। हाँ मुझे आए हुए थोड़ा टाइम हो गया। तुमने अमायरा को ड्रॉप कर दिया क्या? दीवा ने जवाब दिया। हाँ कर दिया और अब मैं भी घर जा रहा हूँ। आज का दिन वाकई काफ़ी अच्छा बीता। क्या हम आगे भी इस तरह से लंच डिनर या मूवी के लिए जा सकते हैं? समय ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा। बिल्कुल जा सकते हैं, आखिर हम दोस्त हैं। लेकिन तुम ड्राइविंग करते हुए बात मत करो, ये खतरनाक हो सकता है, दीवा ने कैरिंग वे में कहा। समय भी उसका ये सुनकर खुश हो गया था। दोस्त ही सही लेकिन उनके बीच एक रिश्ता बन गया था और वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता था, फिर चाहे शुरुआत दोस्ती से ही क्यों ना हो। दीवा समय से बात कर रही थी। इस दौरान बीच में आर्यांश के 2 से 3 कॉल आए थे। रिंग छोटी थी तो दीवा का ध्यान नहीं गया। दीवा लगभग 10 मिनट से समय से कॉल पर थी। अब ये आर्यांश की बर्दाश्त से बाहर होने लगा। उसने एक लंबी रिंग की। दीवा का कॉल फिर से वेटिंग में देखकर आर्यांश ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां बांध ली। वहीं दीवा ने जैसे ही खुद को मजबूत का कॉल आते देखा तो वो बुरी तरह घबरा गई। वो खुद को आर्यांश के सवालों के लिए तैयार करने लगी क्योंकि उसका कॉल वेटिंग में देखकर आर्यांश उसे ढेरों सवाल पूछने वाला था जो नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं होने वाले थे।